ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 13 राजा राहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। श्लोक संख्या 6। क्वचित् वितोयाः सरितः अभियाति परस्परं च आलसते निरन्धः आसाद्य धावम् क्वचित् अग्नितप्तः निर्विद्यते को च जख्यै हितः आसु। क्वचिद् वितोया सरितः अभियाति परस्परं चालसते निरन्धः असाध्य धावं क्वचिद् अग्नितप्तो निर्विद्यते को च जख्यैहृतासुः। क्वचिद् वितोयाः सरितः अभियाति परस्परं चालसते निरन्धः असाध्य धावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते को च यक्षैहृतासुः। क्वचिद् वितोया सरितः अभियाति परस्परं चालसते निरन्धः असाध्य धावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते को च यक्षैहृतासुः। शब्दार्थ क्वचित् कभी वितोया जलहीन सरितः नदियां अभिजाति नहाने जाता है अथवा भीतर कूदता है, परस्परम एक दूसरे से च तथा आलसते कामना करता है, निरंध अन्नहीन होने पर असाध्य अनुभव करके दावम पारिवारिक जीवन में जंगल की आग या दावाग्नि क्वचित कभी अग्नितप्त आग से जलने के कारण निर्विद्यते निराश होता है, कोहो कही च तथा जक्षैहि डाकुओं तथा उच्चकों जैसे राजाओं द्वारा हिता ले लिया जाने पर वा छीन जाने पर असुह संपत्ति जो प्राण के समान प्रिय है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी बद्ध जीव उत्थली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है, दानी नहीं है ही नहीं। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसे होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राण से भी प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। दोहराइए, कभी कभी बद्ध जीव उत्थली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसे होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। तात्पर्य, सूर्य की झुलसती धूप में रहने से गर्मी अनुभव करने के कारण मनुष्य कभी कभी नदी में कूदकर विश्रांति प्राप्त करना चाहता है, किंतु यदि नदी शुष्क प्राय हो और पानी उथला हो तो कूदने वाला अपनी हड्डियां ही तुड़वाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव निरंतर कष्टों का अनुभव करता रहता है, कभी अपनी नेत्रों से सहायता प्राप्त करने के उसके प्रयास सुखी नदी में कूदने के समान ही सामने आते हैं, सॉरी कभी अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करने की उसकी प्रयास सुखी नदी में कूदने के समान ही सामने आते हैं। ऐसे प्रयासों से उसे कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी हड्डियां टूटते हैं। कभी कभी अर्णाभाव के कारण मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है पड़ सकता है जो दान देने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर देना भी नहीं चाहता है। कभी कभी मनुष्य गृहस्थ जीवन में ही बना रहता है जिसकी उपमा दावाग्नि से दी गई है, संसार दावा नलीढ़ लोक। जब सरकार किसी पर भारी कर लगा देती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है, भारी कर के कारण उसे अपनी आय छिपानी पड़ती है, किंतु सारे जत्नों के बावजूद भी कभी कभी सरकारी एजेंट इतने सतर्क रहते हैं कि और इतनी बलशाली होते हैं कि वे सारा धन छीन लेते हैं, जिससे बद्धजीव अत्यधिक व्यथित हो जाता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में रहकर लोग सुखी रहने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका यह प्रयास दाबाग्नि से पीड़ित जंगल में सुखी रहने के प्रयास के तुल्य है। जंगल में जाकर कोई आग लगाता नहीं, वह स्वतः ही प्रकट होती है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में कोई दुखी नहीं रहना चाहता है, किंतु प्रकृति के सुख दुख के नियम प्रत्येक व्यक्ति पर बरबस लादे जाते हैं। अपने भरण पोषण के लिए किसी पर आश्रित होना कितना लज्जास्पद होता है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निराश्रित रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ है, उन्हें अपने शरण के लिए किसी न किसी की सेवा करनी होती है। शास्त्र में कहा गया है कि कलौ शूद्र संभवा। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह भरण करने के लिए अन्य की कृपा पर आश्रित रहता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में कहा गया है कि कलयुग में सरकार कर तो लेगी, किंतु उसके बदले में जनता का कल्याण ही देखेगी। अनावृष्ट्या विनक्षंती दुर्भिक्ष कर पीड़िता। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी, जिससे अन्नाभाव होगा और सरकार द्वारा लगाए गए कर से जनता अत्यधिक पीड़ित होगी। इस प्रकार जनता शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकेगी, अतः वह अपना घर बार छोड़कर ही घोर निराशा बस जंगल में चली जाएगी। ओम अज्ञानाति मिरंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। क्वचित वितोया सरित अभियाति परस्परं चाल सते निरंध असाध्यतावं क्वचिद अग्नि तप्तो निर्विद्यते कोच जखै हृदासुः।
कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं हुए और देना नहीं चाहते। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि में जलने लगता है जो दावाग्नि जैसी होती है और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठते हैं जो उसे प्राण से भी अधिक प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आय कर के नाम पर लूट लेते हैं। हरे कृष्ण। ये प्रैक्टिकल है, कितने लोग इसका अनुभव है, गृहस्थ लोगों को इसका अनुभव है, हैं? क्वचित वितोया सरित अभियाति च निरंध परस्परम चलसते क्वचित दावम असाध्य अग्नितप्त च कजक्षै हृतासु निविद्यते हैं। सबसे पहले कहते कि श्रीधर स्वामी टीका लिखते हुए इस श्लोक के ऊपर कहते कि वितोयासु सरित्सु पतितस्य गात्रभंगात सद्यो दुखं भवति। वितोया जो कह कि वितोयासु सरित्सु, वितोया वितोया का अर्थ क्या, जड़हीन। हाँ, वितोया शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी अर्थ करते कि जड़हीन। सरित सरित का था नदी, हाँ, कभी सूख जाता है नदी, धूप के टाइम सूखा रहता है। हाँ, बिहार में एक नदी है तो सदा सूखा रहता है, बारिश में थोड़ा थोड़ा पानी होता नहीं तो पूरे साल भर सूखा रहता है। कौन सा नदी है, फल्गु नदी है, साध करने जाते हैं ना गया में, गया में वो नदी आता है, वो नदी सदा सूखा रहता है लेकिन थोड़ा सा खुदाई कर दोगे बाली को तो उसके अंदर पानी निकलेगा लेकिन ऊपर से पूरा सूखा दिखता है, पूरे बालू ही बालू। इसी प्रकार कभी कभी जो सूखा नदी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी 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 परिश्रम करता है, खेती में काम करता है, झुलस अग्नि की झुलसती धूप में रहने की गर्मी अनुभव करते हैं, इसलिए कभी कभी वो नदी में कूद जाता है, नदी में अर्थात स्नान करने के लिए नदी में कूद जाता है, स्नान करके थोड़ा सा पानी में डुबकी लगा के थोड़ा उसका आराम लगता है। ये संसार इस प्रकार एक दावानल के समान है, संसार में जो रहने वाले संसारी व्यक्ति है, हैं, तो उनको इस प्रकार उत्ताप अनुभव होता है। कौन सा संसार दावानल, रूपा जी इसको संसार दावानल निढ़लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। लेकिन सो तब मैंने ऐसे ही पूरा अपने नेचुरल बारिश होगा और वो संसार के तहत जो गर्मी को दूर करने के लिए कितना लोग वेट करता नहीं है, हैं? ऐसा कौन वेट कर सकता है। कोई चातक पक्षी एक पक्षी होता है जो और दूसरे कोई पानी नहीं पीता, कौन सा पानी पीता है, केवल आ करके लगता है जो बारिश का मुख में टपकेगा तभी पिएगा, नहीं तो नहीं है, सब समय पुकारते रहता है किसको, मीत। मीत का अर्थ क्या, मित्र। चातक पक्षी किससे मित्र बनाया, बारिश से, जाना बारिश का पानी पीता और कुछ नहीं पीता। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे सोचते कि हम तो गर्मी आ गया तो संसार तो हम वेट करेंगे, हैं? वेट करना चाहिए किसके लिए, भगवान की कृपा के लिए, सद्गुरु की कृपा के लिए। संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, तो हम लेकिन हम इतने तक कोई वेट करता है, संसार में कोई व्यक्ति रहता स्वयं इसका प्रतिकार कर लेना चाहता है, इसलिए कभी कभी देखता है कोई व्यक्ति गर्मी अनुभव करता है तो, हाँ, जैसे कोई गर्मी अनुभव नदी में कूद जाता है। इसी प्रकार संसार में संसार की अग्नि में तप्त है, तपित होकर व्यक्ति कभी कभी ऐसा ही कूद जाता है, किसी दूसरे के आश्रय मांगता है, स्वयं को ठंडी रखने के लिए शरीर को थोड़ा सा, तो कहीं ऐसे यहां पर उदाहरण देंगे कि वो जैसे कहाँ कूद जाता है, नदी में कूद जाता है, और नदी यदि सूखा हो और व्यक्ति ऐसे ही अंधा जाएगा वहां कूद जाएगा
थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर दिखाई पड़ता लेकिन कूद जाएगा, लेकिन पानी इतनी गंभीरता नहीं होता है, कूद जाने से क्या होता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। वितयासु शरीरसु पतितस्य गात्र भंगात सद्य दुख भवती, निश्चित रूप में दुखी बनेगा। जब कूदेगा उसमें तो हड्डी तो तोड़ ही जाएगी, हाथ हड्डी फिर तोड़ जाएगा तो उसको दुख अनुभव होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अरे संसार में कभी कभी व्यक्ति दुखी होकर और ना आता, उसका पेट नहीं भरता और ना आदि, जब इसको पेट नहीं भरता है और अन्न की कामना करके, भोजन की कामना करके कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो कभी देने वाला नहीं होता है, इसको मांगने बहुत देने की नहीं है। कभी 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 बद्ध जीव उत्थली नदी में कूद पड़ता अथवा खाद्यान्न न होने पर किसी लोग से अन्न मांगता है जो दानी नहीं होता है, बा होने पर भी वो देना नहीं चाहता है, हैं? तो हमको ऐसे ही व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए जिससे हो और सबको जो पालन करते है, एक साथ में जो सभी को भरण पोषण करता है, हैं? विश्वम्भर, संपूर्ण विश्व को जो भरण पोषण करने वाला है। हमें संसार दाबाग्नि से को बुझाने के लिए बा उससे मुक्त होने के लिए तो किसको मांग, किसके शरण में जाना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए, व उनके प्रतिनिधि सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। ये ना करते हुए तथाकथित मित्र लोग ढूंढता है संसार में, सोचता कि ये मेरी दुख का मिटा देगा, इसके पास जाऊंगा तो वो मिट जाएगा, इसको मित्रता करूंगा तो वो मुझे सहायता करेगा। लेकिन भगवान कहते गीता में कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान त्वामां शांति रुच्छति, प्रकृत शांति व शीतलता हमको तभी अनुभव होगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवात्माओं की एकमात्र सुहृत मित्र कौन है? भगवान कहते कि मैं ही हूं, श्री कृष्ण ही सभी के सुहृत मित्र है। इसको जो स्वीकार करके भगवान के शरण में जाता है, सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा मां शांति रुचि, उसको शांति प्राप्त हो सकता, सुख प्राप्त हो सकता, व भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि के शरण में जो जाता है। जैसे प्रभुपाद ने कहीं भी कोई पत्र लिखते थे, पत्र के अंत में क्या लिखते थे? योर एवर वेल विशर, हैं? योर एवर वेल विशर। जैसे भगवान सभी के मित्र होते हैं, सभी के शुभाकांक्षी होते हैं, उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्त भी, ये भी सभी के मित्र और सभी के शुभाकांक्षी होते हैं। इसलिए उन्हीं के शरण में जाने से हमारे प्रकृति में संसार के समस्त समस्या हल हो जाता है। ये ना करते हुए लोग कभी कभी सोचते कि अन्नाभाव आदि होता है तो दूसरे किसी के आश्रय, दूसरे किसी मित्रता बनाते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर बनाता है, कोई कई प्रकार के, पर दूसरे की आश्रय लेना चाहते, भगवान के आश्रय न जाकर, भगवान के प्रतिनिधि के आश्रय में न जाकर किसी संसारी व्यक्ति के आश्रय में जाता है। इसलिए वो कैसा होता है ना, जैसे सुखा नदी में कूदने के समान। सुखा नदी में यदि कोई कूद जाता तो जैसे उसका हड्डी फड्डी से टूट जाता है। तो इस संसार दबानल में झलसने वाले व्यक्ति यदि कोई ऐसा ही मित्र को ढूंढता है, जो असली मित्र भगवान श्री कृष्ण व उनकी प्रतिनिधि के शरण में न जाकर कोई वैसे विषयी व्यक्ति, संसार के व्यक्ति जो वो भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाएगा, उसके आश्रय लेगा तो निश्चित रूप में उसको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि बंधु बनाएगा भगवान को, अपना असली बंधु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो भक्त होता है भगवान के पास जाता, दूसरे के पास नहीं जाता। सुदामा को भी अन्न का अभाव था, सुखाना नहीं, पूरा पेट नहीं भरता था, पत्नी को भी साड़ी पहनने के लिए था नहीं, एक साड़ी में एक कपड़े में 20 क्या छेद था जिससे उसका पत्नी जो पहनती थी। तो इसलिए उन्होंने मांगने के लिए, जब इसको जो इच्छा है मांग जानती थी और ना, तब से पत्नी ने बार बार कही है कोई देखो तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, हैं? ऐसे भूखे कितने दिन रहेंगे। तो इसलिए वो कहा अपने मित्र किसके पास गया, दूसरे किसको मांगा नहीं, सीधा कृष्ण के पास गया, द्वारका में गया है। द्वारका में गया तो भगवान ने उसका भूख मिटाया कि नहीं, हैं? वो मांगा भी नहीं। सुदामा गया था लेकिन मांगा नहीं भगवान को, मांगा नहीं। एक है वो क्या टुकड़े हुए चावल का भाजा है दिया था उसके पत्नी ने, इसको कपड़ा में बांध दिया था, ऐसे टुकड़े का मैंने कपड़े में बांध के ऐसे ही इसको फिर ऐसा रखता था, कहाँ हाथ का नीचे यहाँ रख के लेके जाता था, उसको शर्म लगता था ऐसे ही चीज को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ रखता था तो पसीने में भीग भीग की वो पूरा
चलता था इसको रख के, तो पिछना भीग जाता था। कैसे हो गया था? 15 दिन लगभग ये सुदामा जा रहा था, कहाँ से? पोरबंदर से द्वारका। तो वो द्वारका पहुंचने के समय वो कैसा हो गया होगा? पूरा भीग के एकदम खाने के लायक रहता वो नहीं, क्योंकि श्रद्धा से लेके गया था, भगवान जानते हैं, उसके पत्नी ने दी है, उसके पास कुछ है नहीं बेचारा, क्या कहाँ से लाएगा? हाँ, डड्डू संदेश लाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं पैसा, जो था उसके पत्नी ने वही मांग की, कहीं पड़ोसी से मांग की, ला के चावल थोड़ा उसको दिया। हाँ, लेकिन भगवान कहे कि पहुंचते सुदामा का तो आदर किए भगवान ने, उसके चरण धोए, उसको हाँ सिंहासन में बैठाए और उसका आरती उतारे, लेकिन कहे कि मेरे भाभी तो कुछ दिया होगा ना, मेरे लिए कुछ दिया हुआ ना, कुछ दिया ना सुदामा, सुबह सोन को तुम तो छुपा रहा था, ये खाने के लायक नहीं है अभी। लेकिन भगवान छीन लिए, पता है बिखड़ गया, लेकिन फिर भी भगवान खाए। तो बंधु ऐसे होना चाहिए ना, संसार में जैसे हम बंधु बनाते ऐसे बंधु होना चाहिए। हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो बंधुत्ता करता है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वं मम देव देव। ऐसा ही जो भगवान ही चरण में आश्रय लेते, भगवान को ही बंधु समझता है, उस व्यक्ति को कभी ये संसार का दुख दबानल सताता नहीं है, ये संसार में रहकर भी वो सुखी रहता है, संसार में रहकर भी वो सुखी रहता, दुखी सुखी रह सकता यदि वो भगवान के शरणागत होता है, भगवान को ही आश्रय में रहता है। हमारे उड़ीसा में एक व्यक्ति था, जाजपुर में रहता था, उसका नाम था बंधु महांती, इसका नाम रखे बंधु, क्योंकि वो बंधु किसको मानता था? जगन्नाथ जी को बंधु मानता था। है, इसका भी खान पान में बहुत अभाव था, वो खाने बिखरे बेचारे भीख मांग कर खाता था। तो एक बार ऐसा ही जाता था, हरिनाम करते करते घर घर में जो मिलता था मुष्टी भी किया उसको लाके कुकिंग करी खाते थे। लेकिन ऐसा एक बार काम दाम भी कहीं नहीं मिला, एक बार ऐसा ही क्या सूखा पड़ गया, बारिश कई दिन से नहीं कि कोई भीख भीख नहीं दे रहा था। हाँ, बेचारा तो मरने वाला था, उसके बच्चे तो पत्रिका क्या, अरे हम तो बच्चे मर जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे, तुम्हारा कोई बंधु नहीं है जिसके पास में जाएंगे थोड़ा कुछ दिन उसका घर में रह कि खा पी की जीवन को बचा सकते। तो कहा कि बंधु मानते ना, कहा कि हाँ हमारा तो बंधु है, लेकिन यहां से 150 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा, जाजपुर से नहीं बस 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर चलो। हाँ, 3 बच्चे में आप 2 ले लो, 2 कान में बैठा, मैं 1 पकड़ लेता हूँ, चलते नहीं तो मर जाएंगे इधर बैठे बैठे। आज पहुंच गए तो पत्नी तो सरल स्वभाव की थी, वो सोचे कि सच्चे इसका कोई बंधु होगा, तो वो तो बंधु किसको मानता था? जगन्नाथ जी को बंधु मानता था। चलते चलते कई दिनों के बाद शाम के समय पहुंच गए जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने, दक्षिण दक्षिण दर्जे की साइड में देखे, उधर जो किचन उधर है जगन्नाथ जी का, जो चावल कुकिंग होता, तो उसका पानी से वो के नाला में आता है उसे। शाम के समय पहुंचा, देखे बहुत भीड़ है मंदिर में, इतनी कोई घुसना बहुत मुश्किल है, थक गए थे चल चल के। तो कहा कि बंधु महात्मा ने कहा कि देखो मेरे मित्र के घर तो आज बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, अभी मैं तो थोड़ा एकांत में जाके मिल के बोलूंगा ना, इतने सारे लोग के सामने कैसे बोलूंगा कि मेरा समस्या कैसे बताऊंगा, इसलिए आज तो चलो यहीं सो जाते हैं और कल सुबह बंधु को एकांत में जाके मिलूंगा बताऊंगा। आज देखे कि पेजाने वाला में उस चावल का है कुकिंग हुआ, तो चावल का पानी से आ रहा, तो उसी से पानी ऐसे ही मिट्टी का कूलर तो पड़ा था, ऐसे वही पेज का चावल का पानी ऐसे है, इसको ला के ऐसे पी लिए, दोनों दो दो ऐसे 2-3 पी लिए, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा पिला दिए, और वही बुरी डालकर सो गए। हैं, ये तो सो गए, लेकिन नींद तो बंधु महांती को नहीं हो रहा था, बोले ये तो भोले भाले मेरे परिवार है, ऐसा ही आ गए मैं बोलने पर बंधु के पास, लेकिन पता नहीं बंधु में किसको बोल रहा है, इनको पता ही नहीं है। बेचारा रो रो कर थोड़ा फुकारा, कहा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये संसार में मेरा और कोई बंधु नहीं है, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, अरे कितने दिन मेरे बच्चे ऐसे हम भूखे पड़े रहेंगे और नके भाव में, हैं, सहायता कीजिए। ऐसे थोड़ा सा प्रार्थना करके बेचारा सो गया, थोड़ा सा आंख झलक नींद आ गया, तो 12 बजे
हाँ देख रहा है कि वो दर्जा जो दक्षिण दर्जे की साइड में सोए हुए थे लोग, कोई बाहर अंदर से बुला रहा है, छोटे बड़ा दर्जा बंद है, छोटे वाला दर्जा जो बीच में खुला है, कोई बुला रहा है, बंधु महांति बंधु महांति। वो बोला कि अरे मुझे कौन बुलाएगा, इधर तो कोई मुझे जानते नहीं, कौन बुलाएगा, वो दूसरे किसको बुलाता होगा यार, ध्यान फिर सो गया। अरे लेकिन बार बार बोला, बोले ये अरे बंधु महांति जो जाजपुर से आने वाले हो, बंधु महांति आओ तुम्हारे लिए मैं लेके आया, तुम भूखे हो ना पूरा परिवार आओ। ये गया और अंदर से देख रहा कोई ब्राह्मण खड़ा था और पूरे पात्र में दे दिया, पूरे थाली में, किसमें, सोने की थाली में था, जगन्नाथ जी की जिस भोग राजभोग लगाते सोने की थाली है, सोना की थाली में सारे भोग सजा हुआ था, प्रसाद सो सजा हुआ था, भगवान को भोग लागने के बाद प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पूरा सजा हुआ था, सभी प्रकार के जितनी आइटम जगन्नाथ जी के पास लगता है पूरे 56 भोग सजा हुआ उसमें, राइस दाल सब्जियां मिठाई कई प्रकार की मिठाई सब बहुत बड़ा हुआ। बोला लो है बंधु महांति ले लो प्रसाद, आप लोग भूखे हो इसको खा लो, प्रसाद खा लो परिवार के साथ, बाद में प्लेट ले लूंगा आके ले जाता हूं। भाई क्या करे, कुछ कहने का पर्वत पहले वो दर्जा बंद, बस शर्ट बंद हो गया वो तो पत्ता ने पूरा प्लेट लेके आया, सब जगाया सबको, पत्नी को उठो, सब तो भूखे थे कई दिनों से खाए नहीं थे, और उठकर वही प्लेट में बैठा कर बस खाने लगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट खाने, बच्चे सब खुश हो गए, इतनी खाए इतने प्रसाद है, जगन्नाथ जी के महा महा प्रसाद। ये वो प्रसाद तो हमको भी मिलना दुर्लभ है, हैं हम जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद खाते हैं वो कौन सा प्रसाद होता है, बाजार में जो बेचता है वो डालडा घी से कुकिंग होता है, हैं ओमफेड घी, उड़ीसा में के होता है कंपनी, इसको ओमफेड कहते हैं, वनस्पति गवर्नमेंट का कंपनी लेकिन शुद्ध वनस्पति, उसमें कुछ मिक्स नहीं होता, तो उसी से पब्लिक सारे को जो प्रसाद खाते उसी घी से सब कुकिंग होता है, इतना घी कहाँ से लाएंगे, हैं 14 क्विंटल चावल डाली कुकिंग होता है, इतनी सारे सब कहाँ से लाएंगे, इतनी घी नहीं वनस्पति में कुकिंग, लेकिन जो राजभोग जो असली भोग राजभोग जगन्नाथ जी के पास में जो सुने सुने थाली में जो भोग लगता है वो शुद्ध घी से बनाया जाता है, गाय घी से, वो प्रसाद दुर्लभ है, ऐसा मिलना संभव नहीं, कोई लाखों लाखों रुपया डोनेशन देता तो हेड पुजारी से कोई दोस्ती करके थोड़ा मिल सकता है, तो इसलिए लेकिन इसको तो प्रसाद मिल गया, राज प्रसाद खा रहे सब उठ के, हाँ बड़ा खुश हो गया, सब पेट भरे, बड़ा बंधु आपका बंधु बहुत खिलाया, सब बोल रहे सब पचास, पत्नी बोला कि आपका अच्छा बंधु है, बहुत खिलाया बंधु है हमको, है सो खाए खा पी, बोले इतनी सुंदर खाता है आपका बंधु, बहुत सुंदर प्रसाद है, खा पी के सो फिर बच्चे सो टायर्ड सो गए, पत्नी भी सो गई, अरे ये भी क्या करेगा, थाली को खाने के बाद इस थाली को अच्छा से धोया, धो के पूरा मिट्टी देकर फिर इसको धो धा के सफाई करके फिर गया, बोला पंडित जी यहीं कौन है, थाली ले लो आपका थाली प्रसाद का थाली ले लो, लेकिन कोई था नहीं, क्या करें बेचारा, कितना बोला बोले कोई आए नहीं, तो आकर फिर उसका जो ऊपर में उत्तरी था गमछा था उसका अंदर में इसको लगा ऐसे लपट के सिर में देकर सिर में देखे सो गए भाई, क्या सुबह तो हल्ला हो गया, जब सुबह दर्शन खोला जगन्नाथ जी के भोग लगाने के लिए देखे गोडाउन में वो प्लेट गायब है, अरे 20 किलो सोना है बे पैके, कोई ऑर्डिनरी प्लेट नहीं सोने का, पूरा प्लेट इतना कहाँ चला गया, सब तो हल्ला गुल्ला मच गया, राजा के पास गया, बोला कि ए पुजारी कोई ले लिया, पुजारी उनको तो मैं अरेस्ट कर सू, कौन लेगा इसके अंदर आके, सो पुजारी लोगों को ऐसा हल्ला मच रहा था, तो एक व्यक्ति जा रहा था दक्षिण दर्जा से, देखा अरे मैं देखा है दर्जा की साइड में एक भिखारी सोया हुआ है, उसका सिर के नीचे कुछ चमक रहा है, कुछ देखो जाके, तो आया देखने के लिए, देख क्या बोले अरे चौकीदार आ गए, सो सब पंडे आ गए, और पंडे सो अरेस्ट होने वाले थे, आसो आगे देखे अरे क्या है, उठो उठो देखे बमछे निकले, यही तो प्लेट यही रखा है, यही चोर है, ये चोर है, समझे नहीं कुछ, उसको पिटाई करने लगे, अरेस्ट कर लिए शासन, हाँ अरेस्ट करे पंडे लोग तो जो ऐसे ही बदमाश हो, बच्ची लाने लगे बहुत है, चोर ये है, हमारा बदनामी हो रहा है, ये कैसे लाए, इनको सोचे नहीं कि भाई ये बाहर है वो गोडाउन के अंदर से प्लेट ये कैसे लेके आएगा, वो सोचे नहीं लेकिन अरेस्ट कर लिए इसको, बच्चा उसका पत्नी सारे रो रहे रून लेके जेल में डाल दी, हैं जेल में डाल दी है, और रात जो शाम हुआ तो उनके सारे रो रहे, वो भी बंधु महांति कुछ नहीं हुआ, तो जितने बोले सुनता कौन, वहां बैठ के पूरा जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता जगन्नाथ को रहा नहीं गया, स्वप्न में अरे राधा के राजा के पास आए, सो रहा था राजा, ले उठ राजा, तेरे घर में कोई बंधु आता है, मित्र आता है, तू उसको खिलाता कि नहीं, आदर करता कि नहीं? हाँ, तेरे घर में कोई आदर का जो बंधु आता है इसको तू अच्छा से सम्मान करता कि नहीं, खिलाता पिलाता है कि नहीं? अरे मेरा भी कोई बंधु है जो मुझे और दुनिया के सारे बंधु को त्याग कर जो मुझे ही बंधु मान के रखा है, भगवान के साथ भगवान को बंधु बनाने के लिए ये संसार के सारे बंधुओं को त्यागना पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। पांडव लोग भी और दूसरे किसी को बंधु नहीं, मैं कृष्ण को ही इनका बंधु थे, ये बंधु मान कि मेरा भी एक ये बंधु है, वो मुझे ही बंधु मान रखा है। भूखा था, मेरे घर में आया, मेरी आश्रय में, और मेरा थाली में मेरे प्रसाद ने मेरा बंधु को दिया, तेरे बाप का संपत्ति दिया है, तू कौन होता है? मेरे बंधु को तू अरेस्ट करके जेल में डाला, जा अभी इसी मुहूर्त में जाके इसको खोलना, सोच तुम्हें। बड़े क्रोध मूर्ति में थे, कौन जगन्नाथ, राजा डर गया, उठा बोला उसका कोई दोष नहीं है, मैंने स्वयं सोहस्त में मेरे स्वर्ण थाली में मेरे थाली में प्रसाद लेकर मैंने इसको सोहस्त में दिया, तुम कौन होता है? जाओ इसको सोहस्त में मुक्त करके उस क्षमा मांग। क्षमा मांगना केवल नहीं, इसकी जिंदगी के लिए मेरे मित्र को जैसे मांगना नहीं पड़ेगा और कहीं, जो मेरे पास आया है मांगने के लिए, इसको जिंदगी के लिए और कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरे लाइफ टाइम इसके खाने पीने का व्यवस्था कर देना, रहने का खाने पीने के लिए सारे व्यवस्था करना, नहीं तो तू मैं सबंग से समाप्त करूंगा तुझे, थोड़ा क्रोधित हो गया जगन्नाथ। तो हमें ऐसा ही बंधु के पास में जाना चाहिए ना, जिसको और न कमी है, तो किस पर कुछ कुछ ही हमारा विपद है, तो विपद के समय में किसके पास जाना चाहिए? जगन्नाथ की जा, पुरुषोत्तम मास है, जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम है माने जाते, पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, तो उनके शरण में जाने में रखा करेंगे पूरे साल के पूरे जिंदगी के लिए। सब राजा ने उनका रहना खाना पीना सारा व्यवस्था कर दिया, पूरा फैमिली का। आज भी दक्षिण दर्जे के पास वहां पूछो कि बंधु महाजी के घर कौन सा था, वो बताएंगे वहां रहता था, और प्रत्येक दिन राजभोग प्रसाद जगन्नाथ जी का जितना प्रसाद भोग लगता उसके पास घर में अपने आप भेजा जाता था, बैठ बैठी खाता था। लेकिन भक्त ऐसे बैठ बैठी भी नहीं खाते हैं, पूरा परिवार भगवान की सेवा में लग गए हैं। जगन्नाथ के शरण में आया, इसलिए जगन्नाथ जी के फूल तोड़ते थे, उनका पत्री पत्री बच्चे सब माला बनाते थे, जगन्नाथ जी की माला बनाए फूल, ये भी कुछ काम किचन में काम करने लगा, तो इसी कारण भगवान की सेवा में पूरे जुड़ गए, और पूरा जिंदगी के लिए इनको खाना पीने का कोई व्यवस्था कोई समस्या नहीं रहा। लेकिन यदि हमें ऐसे कि संसारी व्यक्ति का शरण में जाएंगे, कोई बैठा बैठे खिलाने वाला है, कोई नहीं खिलाएगा, यदि भी कुछ करेगा सभी जरूर उसके पास में कुछ ना कुछ कपट्यता रहता है, कपटता रहता है, कपटा करेगा, कुछ खिलाया तो उसके बदले में ऐसे फ्री में बैठा बैठी कोई नहीं खिलाने वाला है। तो इसलिए ये श्लोक भी ऐसे ही कहता कि कचित वितोया सरित अभियाति च निरंध परस्परम चल। ऐसे ही कभी कभी हम क्या करते हैं, उत्थे हम ऐसे ही व्यक्ति के खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोग से अन्न मांगते हैं जो दानी नहीं होते हैं। दानी नहीं जैसे व्यक्ति को मांगने से थोड़ी देगा, वो कंजूस है खुद ही। ये पुरुष पुरुष तो ऐसा महीना में भी एक कथा ऐसा ही आता है, एक अंतिम जो पांच दिन के जो महिमा को बोला बोलते हुए, जैसे कार्तिकी में अंतिम पांच दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, उस समय पंचक है जिसको पंचक पालन करते लोग, जैसे कि पुरुषोत्तम के महीना के भी जो पांच अंतिम पांच दिन होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस महात्मा को कहते हुए उसमें कहते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे युधिष्ठिर महाराज को है कि पुरुषोत्तम महाराज के नहीं पुरुषोत्तम मास के अंतिम पांच दिन में एक बंदर था, ये मृगतीर्थ में एक कुंड में पवित्र कुंड में गिर जाने के कारण तो पानी के अंदर डुबकी रहा, अंतिम पांच दिन इसने डुबकी रहा और अंतिम दिन में इसका शरीर छूट गया। उसी से इसको क्या मिल गया फल, पुरुषोत्तम मास में पांच दिन निर्जल रहना और निर्जल रहकर व्रत रखने का और स्नान नित्य स्नान पवित्र कुंड में स्नान करने का फल मिला। गोलोक से विमान आकर इसको सीधे गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के धाम में लेके गया है। तो उसको बोल रही भाई ऐसा कैसा हुआ, ये बंदर ऐसा पूर्व जन्म में कौन था क्या था ऐसा कैसे हुआ है? तो भगवान फिर बताते इसके पूर्व जन्म, वो जो बंदर था कहते कि वो केरल में उसका जन्म हुआ था। कहाँ? केरल प्रदेश में उसकी जन्म हुआ था, केरल में। उसके उसको सारे लोग कंजूस कंजूस कहते थे। यदि उसके नाम और कुछ उसके पिताजी ने रखा था, कुछ चित्र चित्रबाहु ऐसा ही कुछ नाम रखा था, लेकिन ये बड़े कंजूस था, ब्राह्मण था, और सभी जाके जहीं कहीं भी यज्ञ होता, दान तपस्या सब जहां होता पहुंच जाता था। किसके लिए? दान लेने के लिए। ज्यादा जो सोना रूपा गहना मिलता था तो जमीन में गाढ़ा करके उसका अंदर रख देता था, है? किसको कभी देता नहीं था, और लोभी इतनी था, किसके घर से जाएगा दान ले लिया, वो सब ब्राह्मण के साथ लाइन में खड़ा होकर दान ले लेगा, लेने के बाद फिर दूसरे कपड़ा पहन के बाद जैसे कैसे पे पहुंच जाएंगे, फिर रोने रुक रुक गया, आप सबको दान दिया मुझे नहीं दिया, मैं भिखारी हूं, मैंने मेरे बहुत कष्ट दुखी हूं मेरे पास है, ऐसा कहेगी, फिर झूठ मूठ कहेगी, फिर दान लेके आता था, कैसा भी लाकर धन को संचय करके रहा, किसको देता नहीं था, बड़े कंजूस ना, खाता खुदी है। इसे बंदर के इसका स्वभाव को आस्ते आस्ते सब लोग पहचान गए, इसलिए उसके पड़ोस में गांव वाले कोई उसको पास पास नहीं बिठाता था, सभी लोग निंदा करते थे इसका, अरे कंजूस है, कई बार चोर डकैत भी उसका धन लूट लेते थे, लेकिन फिर भी वो धन को माने इतनी आसक्त था वो, उसी के बाद लेकिन गांव की बात शहर में सारे लोग इसको तिरस्कार करने लगे, बाद में सब लोग देखे कि ऐसा ही है, इसको कोई यार ब्राह्मण का भोजन में बाहर बुलाते नहीं थे, कोई धक्का धक्की करते थे, बेकार का आदमी है, तो आदर कोई नहीं किए, बड़ा क्या करेगा, बड़ा दुखी हो गया। लेकिन एक मित्र उसका था पास में, एक माली, माली मैंने क्या नहीं सॉरी एक गार्डनर था, ये बड़ा अमृत की गार्डन था, अमृत केवल अमृत का पेड़ था, बहुत बड़े बड़े अमृत उसमें होता था, तो वो उसका साथ मित्रता रखा था माली के साथ, माली के पास जाएगी दुख कहता था, जैसे यहाँ पर कहते ना है दुख हो जाएगी, उसके पास कहता था कि जब देखा कि सब लोग अनादर कर रहे हैं, लेकिन इसके पास तो खाना था, खाना था, होते हुए खा नहीं था, खा नहीं पाता था, कंजूस था, है खाली ऐसे कृत्रिम रूप में कहता था कि मैं गरीब हूं, लेकिन गरीब नहीं था, धन होने पर भी गरीब कहता था। तो अब वो जाकर अपने माली मित्र के पास में पहुंचा, बहुत दुख सुख, तो माली ने कहा कि ठीक है मित्र मेरे साथ रहो, मैं जो मैं खाता हूँ वही खाना, तो वहां रहा कुछ दिन, देखा कि माली वो जैसा बोलता है ऐसा ही चलता है, सब देखकर उस विश्वास हो गया, क्या कि बगीचा की आज से तुमको ही गार्डनर मैं बना, मैं जाता हूँ कि नौकरी कर लूंगा, वो जाके राजा के अंडर में कुछ नौकरी कर लिया और इसको पूरा गार्डन का दायित्व देके चला गया। तो ये क्या करने लगा, नहीं ये गार्डन में जितनी भी अच्छा अच्छा मैंने वो जो पेड़ा ने क्या होता अमृत, जो अच्छे अच्छे अमृत सब देखता था पक्का बात, सब तोड़ तोड़ के सब खाता था, बहुत खाता था, है सब खा के पेट भरता था, और जब बीच में उसका मित्र आता था, अरे कुछ अमृत तुम बेचा, कितना पैसा कुछ हुआ, बोलता अरे कहाँ अमृत आता है, अमृत तो कोई ये पखिया आके सब खड़िया खा जाते हैं, ये पखिया को मारते मारते देखो भागाते भागाते मेरे लाठी कितना पखियाओं की पोरू इधर गिरा हुआ, कोई नहीं है, और ये खाता खाते के और जो बेच के अमृत सुबह अपना छुपा के पैसा अपने साथ रख लेता था, विश्वासघातकता करता था मित्र के साथ, वो बेचारे आश्रय दिया। इसीलिए ये जो बुढ़ा हो गया, इसका मृत्यु हो जाने से 87 साल उम्र में इसका मृत्यु हो गया, तो जमदूत आकर से बांध के लेके गए, वो कंजूस को है वो विप्र ब्राह्मण जो था, बांध के लेके गए, और जमराज ने चित्रगुप्त को पूछा इसका रिकॉर्ड क्या है, चित्रगुप्त बोला कि ये ऐसा ही किया है, ये इतने धन को कमाया लेकिन धन तो खुद खाया नहीं, गढ़ा देके मिट्टी में गया रखा, इधर उधर रखा, लेकिन अंत में अपने मित्र को भी ऐसे विश्वासघातकता किया, झूठ बोलता है, ब्राह्मण होकर इसको झूठ नहीं करना चाहिए, और सदा झूठ का आश्रय लेता है, ब्राह्मण हो कुल में होकर सारे शूद्र की आचरण किया है। जमराज बड़ा क्रोधित हुए हैं, क्योंकि तूने बंदर ये चुरा चुरा के क्या खाया, अमृत खाया, इसलिए तू बंदर की जुनी में जा है खाते रहो तो इसलिए लेकिन उसी वो फिर वो इसी क्षेत्र में आकर बंदर बन के जन्म लिया है, बंदर बन के जन्म लिया, लेकिन इतनी ऑफेंस के कारण उसका मुख में भी पित्त आता, पित्त दोष रहता था, घाव हो जाता था मुख में, वो अमृत पकड़ता है लेकिन खा नहीं पाता है, ऐसे में तोड़ तोड़ के फिर से नीचे गिरा देता है, अच्छा पेड़ देखते अमृत फिर जाके तोड़ता है लेकिन खा नहीं सकता, गिरा देता। तो इसलिए साधु संत जो रहते थे आते थे, मतलब बंदूर अच्छा है खाता नहीं है, तोड़ के नीचे डाल देता है, तो वो लोग सुबह उसको खाते थे, दे बंदर लोग मैंने साधु संत है। लेकिन ऐसे होते होते बंदर है जिंदगी से बीते बीते जो बुढ़ा होता है, ऐसे एक दिन छिलंग लगा रहा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता था, खा नहीं पाता था कुछ, बहुत मुश्किल से थोड़ा कुंड के पानी ऐसे मुख लगा के पीता था, पीता पी भी नहीं पाता, खा नहीं पाता था। लेकिन एक बार एक पेड़ से दूसरे पेड़ को छिलंग लगा रहा था तो बीच में पानी में ही गिर गया, इतना दूरी में था तो छिलंग पहुंच नहीं पाया, पानी में कुंड में ही गिर गया। कुंड में गिर गया तो कुंड में तो अथल पानी था, उसको तो शक्ति भी नहीं था, एकदम रुकना हो गया था, तो वहीं से डूब के पानी में ही रहा। कैसे भी प्रयास करके से 3 दिन तक तो जीवन धारण किया, और ये पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन में उसका शरीर छूट गया। लेकिन ये तीर्थ स्थान में बंदर क्यों बना, अन्य स्थान में बंदर बन सकता था। वह कहते कि नहीं, ये जो एक बार इसके पहले जो पुरुषोत्तम मास में जो ब्राह्मण लोग ने व्रत रखे थे, ये जाकर वहां पर ब्राह्मण के पास में दान लेने के लोभ में वहां खड़ा होकर थोड़ा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना था, श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धा से ऐसा ही खड़ा थोड़ा सुना था। ये पुरुषोत्तम महात्म्य की थोड़ा सा श्रवण इसकी हुई है, इसी की पुण्य में इसको पुण्य क्षेत्र में ही बंदर बना है जन्म मिला, और अभी ऐसा ही झील में पुरुषोत्तम मास में, और ये कुंड में गिर गया। इसको 5 दिन कुंड वो पवित्र कुंड में स्नान करने का और निर्जल व्रत रखने का फल मिल गया। सीधे कहाँ चला गया, गोलोक धाम चला गया। लेकिन हमें ऐसे ही सौभाग्य मिलना इतने आसान नहीं है। लेकिन ये श्लोक में कहते कि जैसे तो कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि में भी जलने लगता है। असाध्य दावंग क्वचित अग्नि तप्तो हो, कभी कभी गृहस्थ जीवन में भी अग्नि से जलने लगते हैं, दावाग्नि जैसी होती है। और कभी गृहस्थ का जो जिस घर में प्रकृत में है पत्नी मधुर बोलने वाली नहीं होती, जिस घर में माँ जिससे घरे माता ना जिसकी माँ नहीं है, अब प्रिय इसका पत्नी भी मीठे बोलने वाली नहीं होती है, आप उसके बच्चे सब ऐसा ही क्या मूर्ख होते हैं, ऐसा घर में रहना कि अपेक्षा जंगल में चला जाना कहा जाता है। नीति शास्त्र में कहते हैं जय ये सब शत्रु होते हैं, यदि कई पिता ऋणंकृत्वा पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी है रूपवती भार्या शत्रु पुत्र जति अपंडित, चाणक्य पंडित कहते हैं। ऐसे घर में हम रहते हैं यदि ये सब गुण ऐसे घर में रहे तो वह घर बड़ा दुखदायी होता है, घर में हम कई प्रकार के दुखी हैं, दुख को अनुभव करते। कोई तो गौतम मुनि देखो ऋषि के पीछा बेचारे महान ऋषि थे, शांति में रहते, लेकिन उनकी एक दोस्त था कि उनकी पत्नी थी कौन अहल्या। अहल्या इतनी सुंदरी थी और उसको वरदान थी कि वो सदा नवजौवन संपन्न रहेगी, नित्य किशोरी भी रहेगी, इसीलिए उसके सौंदर्य जगह में मुग्ध होकर देवता लोग भी आते थे। उसकी कोई दोष न होते हुए भी वो आते थे, इंद्र और सूर्य आदि देवता छत्र चंद्र आदि छत्र में आके उसको उपभोग करने आते थे। गौतम मुनि का वेश धारण करके आ गए एक बार, कौन इंद्र ने गौतम ऋषि गए स्नान करने गंगा में, रात उठ के सोचे कि वो, और ये जो था चंद्रमा क्या करता था बैठ के वो बन गया मुर्गी, बन गया मुर्गी बनकर, उस समय तेलाराम क्लॉक बारा ऐसा नहीं था, तो मुर्गी बैठकर आवाज करने, मुर्गी की आवाज करने लगा कौन चंद्रमा, मुर्गी की आवाज सुनकर सोचे कि मुर्गी को आप ले करता है ब्रह्म मुहूर्त में, बोले कि रात्रि समाप्त हो गया इसलिए उठ के चले गए स्नान करने गंगा में। चले गए थे इंद्र गौतम मुनि का भेष लेकर ऐसे ही अंदर में घुस गया। अहल्या का दोस्त था, यदि वो पहचान गई थी कि ये, लेकिन फिर भी इंद्र के साथ थोड़ा सा संभव करने की इच्छा से लालसा से वो अपने को रक्षा नहीं कर पाई तो इसलिए। लेकिन गौतम मुनि जब जाके स्नान कर रहे थे पानी में थोड़ा सा गामछा डाल दिए, गंगा जी ने कहे कि मैं मेरे पति के साथ हूं, अभी मेरे को स्पर्श नहीं करना मुनि, जाओ तुम देखो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये कोई असली मुर्गा नहीं था, वही अभी अर्धरात्रि है। मुनि आकर समझ गए थे, थोड़ा सा देखे जोगन इंद्र बोले कि वो तुमको प्रताड़ित कर रहा है इंद्र और चंद्र, आके देखे मुर्गा बन के तब से बैठा था कौन, इसलिए जो भीगा हुआ गामछा था उसमें लगाया पहार प्रहार किए मुर्गे, तो इसलिए चंद्रमा के शरीर में क्या है कलंक है दाग है, मारे उसको घर में गए तो इसलिए क्रोधित होकर अभिशाप दिए, इंद्र भाग रहा देखकर गौतम भी भाग रहा था, कहे कि तेरे सारा शरीर जोनि जैसे हो जाए, इतनी स्त्रियों की जोनि में तुझे आ सकती है, है? लेकिन वो कहे कि इंद्र बहुत पावरफुल था, तो उन्होंने कहा ठीक है तुमको ही सारे जोनि जैसे देखेंगे लेकिन दूसरों को आंख जैसे देखेंगे। तो लेकिन इसलिए कदम ने बड़े दुखी होकर फिर अभिशाप दिया अपनी पत्नी पर, पत्नी को जा तो पत्थर बन जाए। तो ऐसे ही संसार में होता है, कभी काम कितनी भी सतर्कता से रहे कोई भी दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी संसार के दावानाल के समान संसार में रहकर सुखी बनना इतनी आसान नहीं है, है? यदि सारे परिवार के वैष्णव है तभी सुखी हो सकता है, है? शंकर जी का परिवार सुखी है, किसलिए माना जाता है कि ये सभी वैष्णव है, है? भगवान भी वैष्णव बैठे पड़े, भगवान की बहन है क्या, बैल है, उनके पत्नी पार्वती की बहन क्या है, सिंह है, सिंह खाने वाला है ना बैल को, लेकिन दोनों बैठे फेस फेस कर ही बैठते हैं, है? उनका एक लड़का का बहन क्या है, चूहा गणेश का, और शंकर जी के गले में क्या रहता है, सांप, लेकिन कोई किसी दुश्मन नहीं करते, बड़े शांति में रहते हैं। दूसरा लड़का का बहन क्या है, मयूर है, मयूर किसको खाता है, सांप को खाता है, क्योंकि परिवार में सारे वैष्णव है इसलिए बड़े शांति में रहते हैं, कोई किसी झगड़ता नहीं है। इसलिए यदि घर में भजन होता है सारे भक्त है तो भक्ति में ठाकुर कहते गृहते यदि न भजन देखी गृहते गोलोक भाई, जिस घर में सारे भक्त है और सभी प्रत्येक दिन घर में भजन होता है, भजन कीर्तन होता है, भागवत पारायण होता है, तो वो घर वैकुंठ है। नहीं तो ये जो कह रहे कि दवाग्नि जल रहा है, ये सारे जनरल केस है, ऐसे भक्त कितनी है संसार में, बहुत कम है, कुछ लोग कई भक्ति करते हैं, है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततानापि सिद्धानां कश्चित् मां व्यति तत्त्वतो, तो भगवान कहते हैं। तो इसलिए संसार के साधन जनरल ऑब्जर्वेशन करके श्लोक कहा गया कि गृहस्थ जीवन की अग्नि में जलने लगता है, दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी भी उठता है, है? क्योंकि आजकल की जो दुनिया में ज्यादा इसको अनुभव होता है कि, है? कि टैक्स लगाता है गवर्नमेंट, है धन बहुत परिश्रम, धन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत परिश्रम करके धन इकट्ठी करना पड़ता है, बाद में गवर्नमेंट आगे क्या कहेगा, दो जीएसटी निकालो, आयकर इनकम टैक्स है, अभी तो जीएसटी हो गया, है अभी चार दुखी हो जाते हैं, है लोग ऐसे प्राण धन तो व्यक्ति को प्राण से भी अधिक प्रिय होता है, है? मनी स्वीटर देन हनी, है मनी, लेकिन इतने परिश्रम करके बेचारा धन कमाता है, लेकिन कलयुग के जो राजा होते हैं, है ये कहते कि इसलिए कहते कि भागवत में भी ये कहा गया द्वादश स्कंध भागवत में, राजन्य दस्यु रूपेण, राजा कैसे होंगे कलयुग में, दस्यु के समान है, है? ये सब प्रजाओं के हित करने वाले नहीं होते हैं, खाली इलेक्शन के टाइम ही कहते हैं, इलेक्शन में कहे कि हमें वोट दो हम आपको क्या देंगे, राम राज्य देंगे हमें वोट दो, लेकिन राम राज्य क्या होता है इनको पता भी नहीं रहता है, है? सोचते कि रोटी कपड़ा और मकान देने से हमारी ड्यूटी खत्म, नहीं, नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लम मृत्यु अनिच्छताम नास्ति राम राजानि अधोक्यजे, जो अधोक्यजे भगवान रामचंद्र शासन करते थे उनकी राज्य कैसे था लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को त्रिताप क्लेश नहीं भोगते थे कोई, है? ना व्याधि किसी प्रकार की रोग व्याधि होता था, है? ना जरा ग्लानि जरा अवस्था वृद्ध भी नहीं होते लोग, किसी प्रकार के शोक व मोहग्रस्त नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे, प्रजा सुखी रहते थे सदा, रामचंद्र स्वयं रात्रि में जाकर प्रजाओं के देखते थे कि प्रजा से वो सुखी है कि नहीं है, उन प्रजाओं के मतामत क्या है, राजा के शासन के बारे में वो भी देखते थे। तो इसलिए राजा के राम राज्य के में तो एक कुत्ता को भी न्याय मिलता था, है? और आदमी की बात तो क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी ऐसे राजा आज नहीं है कलयुग में, कलयुग में राजा कैसे हैं, राजन्य दस्यु रूपेण, ये दस्यु के समान लूटने वाले हैं, इसलिए संसार में दावाग्नि में जलने जो व्यक्ति ऐसे दुखी हो जाता, प्रभुपाद जी ने इसलिए अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कौरव शूद्र ने अनावृष्ट्यम विनख्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता, ये भी भागवत के श्लोक है, ये अनावृष्टि भी होगा क्योंकि योग्य नहीं करेंगे कलयुग में, बारिश कैसे होता है? बारिश होता है यज्ञ करने से। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अर्ण संभव है, अर्णात भवति भूतानी है, यज्ञ कर्म संभव। ये प्रोसेस है। लेकिन अभी कोई कलयुग में यज्ञ करता नहीं। कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ ना है, कौ संकीर्तन यज्ञ है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। आज संकीर्तन तो कोई संकीर्तन नहीं करेंगे तो बारिश कहां से होगा? हमारे इस्कन की भक्त कितने बेचारे कहां जाएंगे संकीर्तन करने? इतना बड़ा दुनिया संसार पड़ा, पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है। जब संकीर्तन करेंगे हरिनाम संकीर्तन, ये कलयुग का यज्ञ। यज्ञ करने से बारिश होगा। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अर्ण संभव। इसीलिए प्रभुपाद कहते कि अनावृष्टि है, इसलिए बारिश नहीं होता है और दुर्भिक्ष पड़ता है ना, खेती में कोई अनाज ठीक से उगता है और ऊपर से कर डालता है कौन? गवर्नमेंट है। दुर्भिक्ष कर पीड़िता, दुर्भिक्ष पड़ता कर से गवर्नमेंट इनके पर टैक्स बीटता है, इसलिए बड़े दुखी रहते हैं। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी जिससे अन्नाभाव होगा, सरकार द्वारा लगाए गए करों से जनता अत्यधिक पीड़ित होगी। इस प्रकार जनता शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकेगी, अतः वह अपना घर बार छोड़कर निराश होकर जंगल में चले जाएगी। हैं, ये स्थिति आएगी कलयुग के कब? अंत अवस्था में। इसे वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 212वें स्कंद में, भविष्य उत्तर पुराण में कई जगह में इसकी वर्णन आती है कलयुग में कैसा होगा। कलयुग के वही तो 4,32,000 साल से कितना बीता है? 5,000 साल बीता है। और कुछ स्टार्टिंग में नहीं हुआ, जुगो सध्या चल रहा, अंत में तो लोग 6 इंच बन जाएंगे, चाखने एक इतने ही छोटे छोटे मनुष्य होंगे, सिर बड़ा बड़ा होगा और शरीर में सारे शरीर छोटे हड्डी सब रहेगा। बैगुन का पेड़ से बैगुन तोड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी डालना पड़ेगा बैगुन तोड़ने के लिए। माँ बच्चे को जन्म देकर ही खा जाएगी उसी को, ऐसे वर्णन आता है। है लोग पानी के अभाव से लोग पिशाब ही पियेंगे, तो ऐसे ही जो स्थिति होने का पहले है, इसीलिए हमें भक्ति करके चले जाना चाहिए ऊपर है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ठीक युग संध्या में आए आके कहे कि जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले कतो निद्रा, जाओ माया पिशाचिर बोले, कितने दिन सोते रहे, उठो है, उठो अरे ना, संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करो। रूपा जी कहा करते कि संकीर्तन आंदोलन सभी के कल्याण के लिए है। ये संकीर्तन तो प्रचार होगा, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि पृथ्वी ते अच्छे जतन अग्रादि ग्राम सर्वत्र प्रचार भई भी मरना, ये प्रचार होगा, महाप्रभु की वाणी असत्य नहीं होगा। लेकिन आप केवल माध्यम बनो और जसलाभ करो, ये नहीं कि तुम संकीर्तन इसकर में छोड़ के चले जाओगे तो प्रचार रुक जाएगा, ये चलते रहेगा। जो इसी आंदोलन में भाग लेता है और फिर जो सुशी बनता है प्रचार कार्य में भाग लेकर, तो ऊपर जी कहते प्रचार ही सार, से प्रचार कार्य में उड़ जाता है उसकी, वो धन्य बन जाता है। इसीलिए लेकिन प्रचार करने के लिए हमारे पास में शुद्धता भी होना चाहिए। तो ऊपर जी कहते कि बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हमारे पास शुद्धता होने के लिए व्रत आदि किस लिए करते हैं? शुद्धता को बढ़ाने के लिए। नियमित रूप से मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करने से, माला पर जप ठीक से करने से, जप करने से, भागवत कक्षा में बैठने से, इस साधना के माध्यम से हमारे शुद्धता बढ़ती है। इसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास के व्रत भी हमारे शुद्धता को बढ़ाने में हमें सहायता करता है। ऑस्टेरिटी करना, तपस्या करना मनुष्य का धर्म है, जितने जिसको संभव है पुरुषोत्तम मास में थोड़ा तपस्या करना, ऑस्टेरिटी करना चाहिए, जान बुझ कर थोड़ा कष्ट उठाना का चाहिए। किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जैसे डेली में वही बात है, जो खाना में थोड़ा कम करना, आहार निद्रा भय मैथुन थोड़ा कमा कर किस में लगाना? भगवान की भक्ति में, भजन में लगाना चाहिए। ये नहीं करेंगे हमारे पास समय कहाँ है, ये नहीं कहना। समय कैसे भी निकाल कर भगवान की भजन करना। प्रहलाद महाराज इसलिए हिरण्यकशिपु को क्या कहा? हित्वात्म पातम गृहअंधकूपम वनं गच्छन्तं हरिमाश्रयेत। क्या कर रहे, गुहा का एक घर का अंधा कुआं में गिरा हुआ है, अभी तुमको वानप्रस्थ लाने का समय हो गया, चलो जाओ जंगल में भजन करो भगवान के। लेकिन हिरण्यकशिपु तो सोचे कि बच्चा क्या बोल रहा है, ये क्या, कौन कौन सिखा देता है इसको? और दोबारा फिर पूछा क्या बेटा, और एक बार दिन पूछा तो कहे क्या सीखा तू, सबसे जो अच्छा सीखा मुझे बताओ। हैं तो कहे पिताजी ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत नवलक्षण। तो बोला आश्चर्य क्या कौन सिखा रहा है इसको। लेकिन यही प्रकृति में प्रहलाद महाराज एक महाजन है, ये दूसरे महाजन से सीखे, किससे, नारद मुनि से सीखे हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है संसार में रहते हुए भी यदि कोई हरि भजन करता है तो फिर ये दावाग्नि को वो बुझा देता है, संसार में रहकर भी वो सुखी रहता है। इसलिए कैवल्य नरक आयते हैं, जो कृष्ण भक्त होता है कैवल्य को अर्थात मोक्ष को नरक के समान समझता, जिसमें सेवा की कोई अधिकार नहीं है साजुज मुक्ति को है। और जो इंद्रादि देवताओं की पोस्ट है पद है उसको भी वो तुच्छ समझता है। आकाश पुष्पायते, आकाश पुष्प यीशु है, और विधि महेंद्रादि कीटायते, इसकी पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो सदा भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल की शरण ले रखा है। तो इसलिए जो भगवान के चरणों को आश्रय करता है वही प्रकृति में सुखी रहता है, चाहे किसी वर्ण व किसी आश्रम में रहे। इसलिए भक्तियों को विनोद ठाकुर की कहना है कि गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको है, हरे नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। सारे भागवत पढ़ के यदि इसको नहीं समझा है, भागवत का सारांश यही है, क्या है, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजते। भागवत इसी को बताने के लिए भागवत है कि कलयुग का मनुष्य क्या करना चाहिए। अंतिम श्लोक में भी सुत गोस्वामी कहे है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक को है कि भागवत पुथी को रखे है, यही है सारांश भागवत का, नाम संकीर्तन जस्य। यदि कोई सदा नाम संकीर्तन कर रहा है नाम जप में लगा हुआ है तो वही प्रकृति में सच्चे भागवत को समझ लिया है, भागवत को समझा है तभी तो सदा जप रहा है। हमारा मन को स्थिर रखने के लिए हमारे जो विश्वास दृढ़ बनाने के लिए ये भागवत को पढ़ना भी जरूरी है। भागवत को डेली पढ़ने से हमारे मति स्थिर हो जाता है, कहाँ, गोविंद के चरण में है। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए, भागवत यदि सारा भागवत सुन के भी फिर हरि भजन नहीं करेगा, भागवत सुनने से क्या है। रूपा जी कहते कोई प्रोफेशनल व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, भगवान प्रसन्न नहीं कर सकता है, ये प्रोफेशनल व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता, भक्त ही केवल भक्ति करता है। भक्त ने भक्ति भक्त संगे न उपजायते है, भक्ति कहां से उत्पन्न होता है, भक्तों की संगति में। इसलिए भक्तों की संगति में बैठकर भागवत के श्रवण करना चाहिए, हरिनाम के संकीर्तन करना चाहिए है, ये सभी शास्त्र की सारांश है। हम दूसरे की संग करने का जरूरत नहीं, भक्तों की संगति में रहना भगवान की, और जो कुछ हमारा आवश्यकता हमें भगवान को मांगना चाहिए, दूसरे कृपण व्यक्तियों को मांगने से मुझे फायदा नहीं, ये केवल हड्डी फाड़ी चोड़ जैसे कहा कि सुखा नदी में जंपिंग करके हड्डी तोड़ता है, ऐसे कि इसके समान है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री पुरुषोत्तम वास की जय, हरे कृष्णा।